स्मृति संगुनाथ पद्म बंधु राधिका। श्रेष्ठ पल बालिकेति ग्रह चंद्र चंद नाथ सिंह सिंह ग्रह काम ताप राधिका वंदिता पिया रूप नाद्य संपदा सायतोस्ति नाधिका उल्लास गीत में सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश
Thank you.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Radha, Giri Hari, Radha, Giri Hari, Radha, Giri Hari, Radha. Thank you. राधमाधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम
हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 43। श्री सुक उवाच एवं दुर्मंत्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्या दुर्मतिः ब्रह्महिंसाम् हितं नेमे कालपाशावृतः असुरः। श्रीसुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशो वृतोऽसुरः कालपाशावृतोऽसुरः श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मे मे कालपाशावृतोऽसुरः माताजि श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सम्मन्त्र्यदुर्मतिः ब्रह्महिंसामितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिकं सह सासंबन्धदुर्मतिः मेने कालपाशावृतो सुरः
शब्दार्थ इस प्रकार है श्री सुख उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार दुर्मंत्री भी अपने बुरे मंत्रियों के कम सह राजा कंस सह सात सम्मंत्रिया विस्तार से विचार विमर्श करके दुर्मंत्री भी दुर्मति ही बुद्धिहीन ब्रह्महिंसाम ब्राह्मणों के उत्पीड़ना को हितम सर्वोत्कृष्ट उपाय के रूप में मैंने मान लिया कालपाश आवृतः यमराज के विधि विधानों से बंधा हुआ असुरः असुर होने के कारण अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चाय अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाहों पर विचार करके यमराज के नियमों से बंधा हुआ था असुर होने से बुद्धि रहित उन कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। तात्पर्य श्रील लोचन दास ठाकुर का यह गीत है कि आपना कर्म भुंजाए शमन कहे लोचन दास ईश्वर विहीन अभक्तगण ऋषियों तथा शास्त्रों से सदुपदेश ग्रहण ना करके मनमाने ढंग से कार्य करते हैं किंतु वास्तव में किसी भी अपनी कोई योजना नहीं होती क्योंकि सभी प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं। बंधे होने के कारण बद्ध जीव की अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करेंगे, अतः अपना निर्णय बदलकर कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों के निर्णय का पालन करना चाहिए, तभी वह यमराज के दंड से बच सकता है। कंस अनपढ़ ना था, वसुदेव तथा देवकी के साथ उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वह प्रकृति के नियमों के बारे में सब जानता था, किंतु अपने बुरे मंत्रियों की संगति के कारण वह अपने कल्याण के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है साधुसंग सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधुसंग सर्वसिद्धि हो। यदि कोई अपना असली कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए कि वह साधु पुरुषों तथा भक्तों की संगति करे और इस तरह अपने जीवन की भौतिक दशा को सुधारे। ओम अज्ञात विरामदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणदलिता शिवशाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कंस के अनुचरों ने कंस को सलाह दिया। सलाह ऐसा चीज है जो नहीं चाहते हुए भी आपको फ्री में देना चाहते लोग। आप मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए, लोग तत्पर है सलाह देने के लिए। आप बोलो मुझे नहीं चाहिए सलाह, नहीं बोलते जबरदस्ती लो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, उसके लिए मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल टेक इट एडवाइस। लेकिन ये जो कंस के जो अनुचर है वो भी कंस को पकड़ के, तो सब लोगों ने सलाह दिया, अनेकों श्लोकों में दिया। उसका सार यही है, उनका कहना यह था कि ये जो विष्णु है वो जीवित है क्यों? ब्राह्मणों की वजह से जीवित है। ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसकी वजह से विष्णु जीवित है। इसलिए क्या करो, विष्णु तो छुप गया कहीं इधर उधर, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको मारना है तो क्या करो, ब्राह्मणों को मारो। ब्राह्मणों को मारने के द्वारा विष्णु वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। पिछली बार या कल परसों के तीन चार दिन पहले की क्लास में हमने चर्चा किया था किस प्रकार ये जो ब्राह्मण हैं, जितने ये ब्राह्मणिकल कार्य हैं, गायें हैं, ये सब विष्णु का शरीर है। हम उसके विषय में चर्चा करते हुए चर्चा किया कि विष्णु का शरीर का अर्थ क्या है, विष्णु के बहुत प्रिय है, दे आर वेरी डियर टू कृष्णा। तो इनको सताओ तो विष्णु को सताने के बराबर है, इनको मारो तो विष्णु को मारने के बराबर है। तो इसलिए सार रूप में उन्होंने कहा कि हे कंस, अभी यही करना चाहिए कि हमको ब्राह्मणों को सताना चाहिए। और जैसे असुरों ने इन प्रकार अपना प्रवचन समाप्त किया, कंस विचार करना शुरू किया। हर एक व्यक्ति का जो विचार होता है, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन चीजों को ग्रहण करता है उसके ऊपर विचार करता है, मंथन करता है, आंखों से जो देखता है, देखने के बाद विचार करता है। तो क्या देखा वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो देखा हुआ चीज के ऊपर क्या विचार किया वो महत्वपूर्ण है। क्या सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो सुना उसके ऊपर कैसे क्या विचार किया वो महत्वपूर्ण है। हमारी चेतना जो है वही चीज को ग्रहण करता है जो बुद्धि के द्वारा विचार किया चीज को ही ग्रहण करता है। मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई एक भिखारी को देखा, तो आप कोई दृष्टिकोण से देखते हो, कोई और किसी दृष्टिकोण से देख रहा है। तो देखना जो है आंखों के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि विचार के ऊपर आधारित है। तो हाउ वी परसीव, अंग्रेजी में इसको परसीव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, अनेकों लोग मंदिर के सामने से निकलते हैं, कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे कितना सुंदर बना है, हाँ वो सिविल इंजीनियर है, इतना मजबूत बना है। कोई आर्किटेक्ट सोचता है कितना सुंदर बना है, और कोई सोचता है कि चलो अभी उत्सव कुछ चल रहा है, मेरा थोड़ा भूख लग रहा है, मंदिर में थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, चलो प्रसाद ले लेते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत थका हुआ, चलो जाके शांति से मंदिर में बैठता हूँ। अनेकों अनेकों लोग उसी मंदिर को देख के अलग अलग विचार के द्वारा इस मंदिर के विषय में मंदिर को देखते हैं। स्ट्रक्चर वही है, लेकिन फिर भी बुद्धि के द्वारा उन विचार करके उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये कंस का अनुचरों का जो प्रवचन है, वो प्रवचन सुन के कंस विचार करने लगा। कंस का विचार इस श्लोक में वर्णन किया गया है। एवं दुर्मंत्र भी कंसहा, एवं का अर्थ है इस प्रकार कंस ने सुना। किनका बात सुना? दुर्मंत्र भी। ये जो मंत्री शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हम लोग बार बार इसको इस्तेमाल करते हैं। मंत्री, ऋषिनाम प्रवरो मंत्री, उद्धव को कहा गया प्रवरो मंत्री, इधर कहा गया दुष्मंत्री भी। दुष्मंत्री, मंत्री का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्री? मंत्री मतलब बोलते हैं मिनिस्टर। राजा के पास हमेशा एक मिनिस्टर होना चाहिए, एक मंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता के अनुसार एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। मंत्री ब्राह्मण होता है, राजा क्षत्रिय होता है। ब्राह्मण होने के नाते मंत्री केवल सलाह मात्र देता है, हर चीज को देख के, हर चीज को सोच समझ के, शास्त्रों के दृष्टिकोण से, साधु पुरुषों के दृष्टिकोण से विचार विमर्श करके मंत्री केवल सलाह मात्र देता है। उस सलाह को कैसे और किस प्रकार निर्वाहन करे, वो क्षत्रिय का कर्तव्य है। लेकिन इस भारत के संविधान में या अन्य जगह, पूरा अनेकों जगह अभी क्या हुआ, मुख्यमंत्री निर्णय लेता, मुख्यमंत्री एग्जीक्यूट करता है। इसकी वजह से सारा अस्त व्यस्तता हो जाती है। ब्राह्मण जब अगर कोई कार्य करने जाता है, कोई अपने सलाह को निर्वाहन करने जाता है, वो नहीं बराबर नहीं कर सकता, चाहते भी नहीं कर सकता। अगर वो करने लग जाए, उनका विचार जो है प्रदूषित हो जाता है, विचार बराबर नहीं कर सकता। इसलिए एक विचार विमर्श करके सलाह देने वाला मंत्री होता है, और एक राजा होता है जिसको उस विचार को, जो सलाह को प्राप्त किया, उस सलाह को वो कैसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो ये सब कौन थे? दुर्मंत्री भी, कंस के साथ में। जिसकी मंत्री दुष्ट होता है, स्वाभाविक तरीके से उसका विचार भी दुष्ट होता है, तो इसकी वजह से राजा भी दुष्ट हो जाता है। राजा दुष्ट होने की वजह से क्षत्रिय जैसे दुष्ट हो जाते हैं, तो वैश्य दुष्ट हो जाते हैं, उसके वजह से शूद्र दुष्ट हो जाते हैं, तो पूरा समाज दुष्ट हो जाता है। लेकिन दुष्टता कहां से उत्पन्न हुई, कहां से शुरू हुई? वो शुरू हुई ब्राह्मणों से शुरू हुई। इसलिए ब्राह्मण को बहुत विचारवान होना चाहिए। ब्राह्मण की आचरण में, उनकी विचार में थोड़ी सी भी गलत हुआ, उसका प्रभाव जो है समाज के ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है, बहुत गहरा रहता है समाज के ऊपर। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण दुष्कार्य करता है, दुष्ट विचार रखता है, उसको ज्यादा दंड दिया जाता था। अगर क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य करते हैं, उतना दंड नहीं दिया जाता था, ब्राह्मणों को ज्यादा दंड दिया जाता था। वैसे ब्राह्मणों को अब मृत्यु दंड देना वर्जित है, लेकिन फिर भी उनको, अगर कोई दुष्टता को स्वीकार करता है, तो उनको राज्य से बहिष्कार किया जाता था। क्योंकि एक जिम्मेदारी के पदवी में होने पर अगर वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी गलत करता है, उसको ज्यादा गौर से देखा जाता है, ज्यादा प्रभाव रहता समाज के ऊपर। अगर बच्चा कोई गलती करता है, उसको ज्यादा परवाह नहीं किया जाता है, लेकिन एक मंत्री, एक एक विचारवान व्यक्ति जो जिम्मेदारी के स्तर में है, अगर वो छोटा सा भी गलती कर देता है, तो वो जगत में बहुत बड़ा होकर दिखाई पड़ता है। ये गलत बात नहीं, ये सही बात है, क्योंकि वो बड़े पोजीशन में है, बड़े स्थान में है, उनकी छोटी बात भी बड़े हैं, छोटी गलतियां भी बड़ा माना जाता है, लेकिन जो निम्न स्तर में है उनका बहुत बड़ा पाप करने के बाद भी, बहुत बड़ा गलती करने के बाद भी उसको ज्यादा मान्यता नहीं दिया जाता है। अभी दुर्भाग्यवश कंस के अनुचर कौन थे, कंस के मंत्री कौन थे, सब असुर थे, उनका नाम उनको संबोधित किया गया है दुर्मंत्री भी, वो भी विचारवान थे, लेकिन उनका कैसा जो विचार था, उनका दुर यानी दुर मतलब दुष्ट, दुष्ट विचार था। अगर कोई व्यक्ति पढ़े इन मंत्रियों का प्रवचन, अगर विचारवान व्यक्ति नहीं है वो सोचे एकदम बिल्कुल बराबर लॉजिक बोल रहे हैं। हाँ, कोई भी बताए, देखो वो बोलते हैं कि भक्त लोग जो है विष्णु का शरीर है, गाय से दूध निकलता है, दूध की वजह से बुद्धि सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वेदाध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब विष्णु का बल है, अगर विष्णु को खत्म करना है तो ये सब खत्म करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये दुर्मंत्र भी उनके वो बुद्धि ही विहीन है, वो सब बुद्धिमान है लेकिन उनकी बुद्धि जो है दुष्ट हो चुकी है, दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले हैं। लेकिन इस जगत में अभी आजकल ये नहीं देखा जाता है कि उसका बुद्धि कितना अच्छा है, ये केवल यही देखा जाता है वो इसका कितना बुद्धिमान है, कितना मात्रा में कितनी बुद्धि है उसके पास, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, लेकिन कितना शुद्ध है वो नहीं देखा जाता है। जैसे रास्ते में कोई चीज जाएंगे, कोई चीज खरीदने जाएंगे, आप सब्जी खरीदने जाओगे, आप ये देखोगे कि कितना सुंदर दिख रहा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना वॉल्यूम है, लेकिन वो क्या शुद्ध है वो नहीं देखेंगे, सब केमिकल से बना हुआ है, लेकिन हम दिखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन अंदर क्या है वो शुद्ध नहीं है। तो शुद्धता में और सुंदरता में बहुत अंतर है, शुद्धता और सुंदरता में अंतर है। कोई चीज साफ हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं हो सकता है। आप फाइव स्टार होटल में जाएंगे ऐसा लगता है एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, क्या साफ है एकदम, आपको जो खाने का जो प्लेट है वो निकालेंगे कहां से, स्टीम से निकालेंगे, बैक्टीरिया फ्री, लेकिन उसके अंदर मांस का टुकड़ा डाल के देंगे, है वो साफ लेकिन क्या है वो अशुद्ध है। इसलिए शुद्ध शुद्धिकरण महत्वपूर्ण है। इस जगत में बहुत सारे चीजें आपको प्राप्त होता है जो सुंदर दिख सकता है, अच्छा दिख सकता है, लेकिन ये सब अस्तित्व में शुद्ध नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है। तो ये मंत्रियों का बुद्धि बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत लॉजिकल लग सकता है सुनने के लिए, लेकिन उनका बुद्धि दुष्ट होने की वजह से वो उनका सारा लॉजिक, सारा तर्क जो है वो सब केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए है। तो एवं दुर्मंत्र भी कंसः, तो कंस ने क्या किया, सह सम्मंत्रिया दुर्मति ही, सम्मंत्रिया बार बार विचार किया, मंत्रियों का जो सलाह है उसके ऊपर और विचार किया और बार बार सोचने लगा। क्या सोचने लगा कंस, क्या सोचा कि मंत्री लोग जो बोल रहे हैं सही है या गलत है, वो नहीं सोचा, मंत्री जो बोले हैं उनको कैसे मैं निर्वाहन करूं उसकी विचार, उसके विषय में सोचा। तो तब प्रश्न आता है इधर, कंस ने इस प्रकार का विचार क्यों नहीं किया कि जो मंत्रियों ने कहा कि वो सही है या गलत है, तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति का अपना निजी विचार नहीं रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत वशीभूत होके विचार करता है और कार्य करता है। व्यक्ति सोच सकता है कि मेरा विचार है, सोच सकता है कि मैंने बहुत मंथन करके विचार किया है, मैंने निर्णय लिया है, मैंने किया है, लेकिन भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं, प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, मूर्ख व्यक्ति ही सोचता है कि मैंने विचार किया है, मैंने किया है, अस्तित्व में कर्ता कौन है, प्रकृति के तीनों गुणों। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि नहीं क्षण भी जात तिष्ठत चकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वकर्मा प्रकृतेर गुणे ही, एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अकर्म कृत कार्य किए बिना नहीं रह सकता है, कार्य के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो कैसे क्या कैसे कार्य करता है फिर, तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि प्रकृति ही वशः कर्म, क्या श्लोक क्या शुरुआत कर, नहीं क्षण विचार तिष्ठत कर्म कार्यते ही अवशः कर्म, विवश होके प्रकृति के गुणों के प्रभाव के वजह से विवश होके वो कार्य करता है, विवश होके इस प्रकार सोचने लग जाता है। अभी देखेंगे कंस ने इधर सम्मंत्रिया ऐसा सोच रहा है कि कंस का विचार है, अस्तित्व कंस का विचार नहीं, कंस प्रकृति के गुणों के प्रभाव में होने के वजह से प्रकृति के गुणों के द्वारा वो जो सुना है उसको उसके ऊपर विचार करने लगा। अस्तित्व में अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्वतंत्रता का विचार है, ये मेरी स्वतंत्र विचार है, मेरा स्वतंत्रता के लिए कार्य करता हूं, वो बिल्कुल गलत है, इट इज ए रॉन्ग नोशन। हाँ, ये मेरा विचार है, मेरा जीवन है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करता हूं। बहुत अनेकों साल पहले एक अंग्रेजी में गाना निकला था, कोई एक ऐसे बड़ा गायक ने गाया था, भाई थी लगता है, पापा डोंट प्रीच, यानी पापा का अर्थ है उधर पिताजी नहीं है, चर्च में जो फादरी होता है, आप मुझे कुछ सलाह मत दो, मेरे पास सलाह है, मैं अपना जो विचार है उसके अनुसार मैं जीवन व्यापन करूंगा। बहुत फेमस हो गया क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र विचार रखूं और स्वतंत्रता से अपना जीवन का व्यापन करूं और निर्णय लूं, जो चाहे वो कर सकूं। लेकिन वो मूर्ख है, वो नहीं जानता कि वो स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास में वो और बंधन में जा रहा है, क्योंकि वो जो सोच रहा है वो उसका विचार नहीं है, प्रकृति के तीनों गुण उसको प्रभावित कर रहे हैं, दे आर फोर्सिंग हिम टू डू इन ए पर्टिकुलर वे, वो सब उनको इस प्रकार विचार करने में वो मजबूर कर रहे हैं, वो मजबूर हो रहा है। इस संसार का दुख की बात यह है, जो सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र तो हूं, अस्तित्व में वो जितना वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं उतना मजबूर है, एक्चुअली वो मजबूरी से सब लोग कार्य करना पड़ता है, देर ऑल बाउंड बाय देर आप ओब्लाइज्ड, एक मजबूरी है। इसलिए आप कोई भी स्वतंत्र है उस व्यक्ति को जाके पूछिए, बहुत सारे बातें बताएगा लेकिन अंत में ही कहेगा क्या करूं मैं, मजबूर हूं करने। जैसे कोई स्वतंत्रता चाहते हुए कोई सोचता है कि सिगरेट पीना अच्छा है, सिगरेट पीता हूं, तो वो सिगरेट पिया तो कुछ समय के बाद पूछो तो क्या हो जाता है, क्या कहता है, मैं मजबूर हूं, आदत से मजबूर हूं। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं कि एक्चुअली हाउएवर नो वन हैज हिज ओन प्लान बिकॉज एवरीवन इज बाउंड बाय द लॉस ऑफ नेचर एंड मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज टेंडेंसी इन मटीरियल कंडीशन लाइफ। भले ही इधर कंस को लिखा गया है कि सम मंत्रिया, अस्तित्व में कंस के जो गुणों का प्रभाव के वजह से वो इस प्रकार सोच रहा है, लेकिन वो कंस का निजी विचार नहीं है, इट इज नॉट। तो अस्तित्व में स्वतंत्रता हमारा केवल इसी में है, किसमें है, या गुणों के प्रभाव से मैं कार्य करूं या कृष्ण और साधुओं का आदेश को पालन करूं, हमारा स्वतंत्रता केवल इन दो चीजों में, एक चीज को स्वीकार करने में है, और कोई स्वतंत्रता अपना नहीं है, देयर इज ओनली इंडिपेंडेंस इन दीज टू थिंग्स, या गुणों के प्रभाव से कार्य करो या साधु शास्त्र के प्रभाव के अनुसार कार्य करो। तो ये भौतिक प्रकृति के अंतर्गत कोई चॉइस नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कोई रजोगुण के प्रभाव में कार्य कर रहा है, वो अगर चाहते हुए भी सत्वगुण में नहीं कर सकता, अगर तमोगुण में है वो रजोगुण में नहीं कर सकता, क्योंकि गुणों का प्रभाव इतना गहरा है, द इन्फ्लुएंस द मोड्स इज सो स्ट्रांग, और इतना मूर्ख बना देता है व्यक्ति को। मूर्खता क्या है, वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ विमूढ़, मूढ़ा का अर्थ है कि वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं लेकिन वो बंधन में है, ये मूर्खता है। मूर्खता का अर्थ है वो सोचता है कि मैं बड़े पंडित हूं, लेकिन बोलता है मूर्खता वाली बात, उसको मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख को मूर्ख नहीं कहा जाता है, है मूर्ख लेकिन अपने आप को पंडित सोचता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। तो इधर है वो बद्ध लेकिन सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तो ये मूर्खता है। तो इसलिए कंस का ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया सम्मंत्रिया, इसकी व्याख्या ये है, ऐसा नहीं कि कंस ने अपने जो मिनिस्टर लोग हैं उनके द्वारा सुना हुआ चीज के ऊपर उन्होंने विचार किया, नहीं, वो रजस और तमो भावना से कुछ बातों को कहे। कंस के अंदर भी रजस और तमो की भावना की वजह से उन सब बातों को सही है करके स्वीकार किया। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति बोलता है कि ये सही है गलत है, ये सही है और गलत है, वो अस्तित्व उसका विचार नहीं है। रजस और तमो या सत्व, ये तीनों गुणों के प्रभाव के ऊपर आधारित होकर कहता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को अगर रसगुल्ला दिया जाए, कोई बोलता है बहुत अच्छा है, कोई बोलता है बहुत खराब है, ये वस्तु एक ही है, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो गुणों के प्रभाव के अनुसार उनको एक वस्तु अच्छा लगता है, वही वस्तु गुणों के प्रभाव के अनुसार किसी और को बुरा लगता है। हमेशा आश्रम में ही कहता हूं, कोई व्यक्ति कहता है प्रभु जी आजकल प्रसाद बहुत मसाला आ रहा है, ठीक है मीटिंग करेंगे, मसाला कम करो, तेल कम करो। अगला दिन तीन चार दिन के बाद देखो वही व्यक्ति मिर्ची लेके बैठेगा साथ में, रजोगुण का प्रभाव इतना है। कार्यते ही आवश्यक कर्म वशः सर्व कर्म प्रकृतिर गुण ही, तो प्रकृति गुणों के प्रभाव से वो अपने आप को रोक नहीं सकते, इज फोर्स्ड। तो ये फोर्स है प्रकृति का गुण, इसलिए ये प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अगर मुक्त होना है क्या करना होगा? कृष्ण का और साधुओं का शरण लेना होगा। हमको ये कहना होगा जो मैं सोच रहा हूं मुझे सोचना है उसमें अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, क्योंकि बेकार है। एक बेकार वस्तु का आप अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, है कि नहीं? कुछ तो बोलते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये भौतिक जगत में ना कोई वस्तु अच्छा है ना कोई वस्तु बुरा है, वो क्या है? वो बेकार है। वैसे ही हमारे मन में जो भी बातें उत्पन्न होती हैं, वो कोई बोले अच्छा है कोई बोले बुरा है, क्योंकि आप आपकी मन की बात किसी को व्यक्त करोगे बोला बहुत अच्छा है, वही बात दूसरे को व्यक्त करो बोले बड़ा बुरा है। अभी क्या समझे, क्या सही है क्या गलत है? अस्तित्व में कोई चीज सही नहीं कोई चीज गलत नहीं, कोई चीज अच्छा नहीं कोई चीज बुरा है, क्या वो बेकार है? हाँ, कोई काम का नहीं है। तो कोई काम का नहीं है वो वस्तुओं में अच्छा बुरा सही गलत को विचार करना, ये हमारी मूर्खता है। तो ये जो कंस का ये जो सम्मंत्रिया और विचार किया, विचार करके, क्योंकि दोनों ऐसा एक ही प्रकार के स्वभाव के हैं, असुर है असुर है, जब दो असुर मिल जाते हैं दोनों के अंदर असुरत्व तो बढ़ जाता है। असुर में असुर को अकेला बैठाइए अच्छा होने का चांस हो जाता है, वो भक्त बन सकता है असुर, लेकिन चार पांच असुर साथ में मिल गए वो कभी सुधरेंगे नहीं। तो एक बार कॉलेज में हम जब पढ़ाई करते थे उस समय जब चार पांच लड़के बैठे होते तब कृष्ण के बारे में बात उठता है, ये चार पांच लड़के मिलके पूरा असुरी प्रवृत्ति को दिखाएंगे, असुरी सिद्धांत को दिखाएंगे, तथाकथित मासूम लोग भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जब उन्हीं ग्रुप में से आसुरी बातें जो कहता है अकेले बैठा रहता है ना, तब वो शांति से बैठ के सुनता है। लेकिन असुरों का जो बल है उनका संगति, जिस प्रकार साधुओं का बल संगति है, असुरों का बल भी संगति है, ये समझना चाहिए। जब असुर अकेले रहता है वो कुछ नहीं कर सकता, अगर दुर्योधन अकेले रहे तो उनके साथ में कोई और असुर प्रवृत्ति वाले साथ नहीं दे, शकुनी इत्यादि साथ नहीं देंगे, तो अगर दुर्योधन की हिम्मत था पांडवों के साथ युद्ध करने की, हिम्मत नहीं होता। तो असुरों का बल भी उनकी संगति है। अभी ये कंस अभी असुरों का संगति से प्रभावित हुआ है, उस प्रभाव में, और उनके अंदर भी क्या था, एकदम बिल्कुल ऐसे ही गुण थे। ये जो विचारों के ऊपर असुरों का जो विचार है उसको और दृढ़ता से स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी। तो इसके वजह से कंस ने क्या किया, वो सम्मंत्रिया। लेकिन उनका जो सम्मंत्रिया बार बार विचार करना किसके ऊपर आधारित था, वो आधारित था दुर्मति ही, वैसे दुष्ट लोगों का सलाह था। और साथ साथ में कंस के अंदर दुर्मति था पहले से ही। आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्लास दिया था कि वसुदेव ने देवकी और कंस ने देवकी और वसुदेव के चरण को पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय वसुदेव का प्रभाव से और इधर कंस का जो भय की जो भावना है उसके वजह से कंस ने क्या किया, भगवान की माता पिता का चरण स्पर्श किया। लेकिन अभी ये असुरों का समाज में बैठे रहने की वजह से कंस के अंदर जो भय था, जो एक व्यक्ति को कम से कम ऐसा स्तर पे लाता है कि शरणागति के स्तर में लाता है, वो भय को निकाल दिया। आप चिंता मत करो, हम है ना इस जगत में। आपको कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि आप चिंता मत करो मैं हूं, ये समझना चाहिए कि आप उसके ऊपर विश्वास किया, वही आपका पतन का कारण है। यानी दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण सोच रहा है और आप उसको कृष्ण मान के उसका शरण ले रहे हो, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो। कभी भी इस जगत में किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत कीजिए, भले लोग बोलेंगे आप चिंता मत करो मैं हूं ना, आई एम देयर। वही व्यक्ति जो बोलेगा कि आप चिंता मत करो मैं हूं, तो कुछ समय के बाद दिखाई भी नहीं पड़ेगा। अगर दिखाएगा बोला तो बोलेगा मुझे नहीं मालूम आप कौन है, आई डोंट नो। तो इसलिए नेवर टेक शेल्टर, यही भी असुरी प्रवृत्ति है, और किसी व्यक्ति का शरण लेना कृष्ण को छोड़ के। तो इधर कंस दुर्मति के आधारित होते हुए सम्मंत्रिया, तो उन्हें निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि ब्रह्म हिंसाम हितम मेने, मेने का अर्थ है मान लिया। क्या मान लिया? मेरे लिए हित क्या है, मेरे लिए सर्वोच्च कार्य क्या है, क्या है? ब्रह्म हिंसाम, ब्रह्म हिंसा करना ही मेरे हित में है। क्योंकि ब्रह्म हिंसा अगर, क्योंकि अगर मुझे जीवित रहना है तो विष्णु को मारना होगा, विष्णु को मारना है तो ये विष्णु के संबंधित लोगों को मारना होगा। इसलिए ब्रह्म हिंसाम, ब्रह्म का अर्थ इधर है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की हिंसा करना ही मेरा हित है। अब देखिए क्या निर्णय, क्या निर्णय लिया। अभी कुछ ही समय पहले वसुदेव और देवकी का चरण पकड़ा था, कितना अच्छा अच्छा प्रवचन बताया, प्रवचन सुना है कि नहीं? हाँ, आप ही वो शरण भगवान श्री कृष्ण सर्व वही है, सब कुछ क्या क्या प्रवचन दिया। श्री प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, अभी कुछ समय पहले कंस का प्रवचन सुनने के द्वारा हमको पता लगता है कि कंस को प्रकृति के गुणों का पूरा ज्ञान था, एक ज्ञानी पुरुष था। लेकिन फिर भी कृष्ण का शरण नहीं लेने की वजह से, दुष्टों का संपर्क में आने की वजह से और उनके अंदर पहले से दुष्टता होने की वजह से कंस ने मैंने मान लिया। क्या माना? कि ब्रह्म हिंसाम हितम, मेरा हित इसी में है। देखिए कितना संगति का कितना असर पड़ता है। अभी चार लोग हैं समझ लीजिए ससुरों के संगति किए, ये चार लोग असुरों को संगति करने के बाद भी तीन लोगों का असर पड़ जाता है, एक का असर नहीं पड़ता। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार का स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव नहीं होने की वजह से, जैसे समझ लीजिए कि एक खेती है, जमीन है, उसके अंदर आप दुष्ट बीज डालेंगे या कुछ जहरीले कुछ बीज डालेंगे, कुछ जमीन में उगता है कुछ जमीन में नहीं उगता है। क्योंकि कुछ जमीन में ऐसा कुछ तत्व होता है, उन विषयों को प्रोत्साहन करने का तत्व होता है, कुछ जमीन में ऐसा तत्व नहीं रहता जिसके द्वारा वो उसका उगने का उसका प्रोत्साहन नहीं होता है। लेकिन कंस के अंदर पहले से दुष्टता था और उनको ऐसा सलाह भी मिला, जिसकी वजह से कंस और दुष्ट हो गया। इधर ब्रह्म हिंसा हितम मैंने काल पाशावृतो सुरहा, बिकॉज इज ए डेमन, असुर था, इसकी वजह से वो क्या किया, उनको क्या वो किसके शरण में गया या किसके अंतर्गत चला गया, काल पाशावृत, काल पाशावृत, इधर काल का अर्थ यमराज, यमराज के जो पाश होते हैं यानी उनका रस्सी होता है उसके द्वारा आवृत हो गया कंस, यानी ये भौतिक जगत में और कंस का जो सॉरी यमराज का जो अंडर में और बंधन में एक अंश आ गया। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तुम्हारे पास अभी हम निर्णय करने के लिए एक ही है राज, ये दो ही दो चीजों में एक को सिलेक्ट करना होगा, ये हमारे ऊपर है निर्णय। मैं अपनी प्रकृति के अनुसार जो मेरे विचार मेरे अंदर विचार आते हैं उसके अनुसार मैं चलूं, या शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के विचार के अनुसार चलूं, हमारी स्वतंत्रता का सीमा इसी में है और किसी चीज में नहीं है। जो अगर गुरु साधु शास्त्र के विचार को स्वीकार करता है वही हमारा मुक्ति का कारण है। जो हमारा विचार वो भले ही कितना भी अच्छा हमको क्यों ना लगे, कितना भी सही हमको क्यों ना लगे, और उसको परामर्श करने के लिए बहुत सारे लोगों का सलाह भी मेलजोल कर क्यों ना करता हो, वो हमारा बंधन का कारण है। इट इज अ बॉन्डेज। बंधन क्या है? यम पाश बंधम, यमराज के पाश में बंधन। देखिए कोई भी अच्छा व्यक्ति भी यमराज के पाश में है, काल के बंधन में है। आप बोलोगे बहुत अच्छा व्यक्ति, इस भौतिक जगत में अच्छा और बुरा ये केवल भ्रम मात्र है, इट इज ओनली ए भ्रांति। इस भौतिक जगत में सही और गलत केवल भ्रम मात्र है, क्योंकि भौतिकता में कोई सही नहीं रहता, कोई गलत नहीं रहता। भौतिकता में कोई अच्छा नहीं रहता ना बुरा रहता है। तो इसलिए ये कंस विचार करने लगा, असुरों का जो प्रवचन है ये सही है तो मैं कैसे इसको निर्वाहन करूं। इससे तुरंत एक ही सेकंड में डिसीजन ले लिया, एक ही श्लोक में वर्णन है, कम से कम समय भी नहीं लिया, तुरंत अगले श्लोक में आता है किस प्रकार उन सबको बुलाए, देखो जाओ सब ब्राह्मणों को गायों को वध करो हत्या करो करके कंस अपना महल में चला गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है हमारे मन में कोई भी विचार आता है या कोई विचार आप सुनते हो और कोई सलाह सुनते हो, सबसे पहला क्या करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र ये तीनों का परामर्श करना चाहिए, तीनों के साथ परामर्श करना चाहिए। जब तक ये तीनों के साथ परामर्श नहीं होता है तब तक हमारा विचार मन में विचार जो है उसको कभी भी पालन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र दे आर द चेक बैलेंस सिस्टम। गुरु साधु शास्त्र का जो व्यवस्था जो भगवान ने बनाया है ये इतना सुंदर है कि मान लो कोई व्यक्ति केवल गुरु का बात ही सुनता है, ये नहीं सोचता है कि गुरु शास्त्र से बोल रहे कि नहीं, तो क्या होता है, वो भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु वही है जो शास्त्र के अनुसार वो बोलते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति शास्त्र को स्वीकार करता है लेकिन गुरु को स्वीकार नहीं करता है, सीधा शास्त्र के अनुसार चलना चाहता है, शास्त्र को ही पढ़ता है, वो शास्त्र को कैसे पढ़ रहा है, तीनों गुणों के माध्यम से पढ़ रहा है, इसलिए शास्त्र को भी गलत समझ सकता है। अगर मान लीजिए कि गुरु ये शास्त्र को वर्णन कर रहे वो सही कर रहे कि नहीं, इसका परामर्श कैसे किया जा सकता है, साधुओं का जो वचन है उसके ऊपर आधारित होकर किया जा सकता है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र यही हमारा तीन संगी है, यही हमारा तीन संपत्ति है जिसके साथ हमेशा रहना चाहिए, जिसके साथ रहते हुए हर एक कार्य के ऊपर विचार करना चाहिए। और हमारा कार्य तभी शुद्ध होगा, हम तब ये भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो मेरा विचार या निजी विचार के ऊपर अपने आप को जीवन यापन करना, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये केवल बंधन का कारण है। क्योंकि निजी विचार क्या है, वो कहां से आ रहा है, गुणों के प्रभाव से आ रहा है। गुण ही हमको बंधन में डाल रहा है, और गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य करते जाएंगे और बंधन में आते जाएंगे और बंधन में आते जाएंगे। तो ये सोचना कि साधु गुरु शास्त्र का आज्ञा को पालन नहीं करना क्योंकि ये मेरे विचार के साथ उनका मेल जोल नहीं है, इसलिए मैं उनका पालन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, यही मूर्खता है। इसे प्रभुपाद जी लिखते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, क्या वो भगवत का श्लोक दूसरे अध्याय का, हाँ दूसरा अध्याय, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, हाँ जो भी है खोल के देखिए। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के नियम। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का अर्थ है नियम, और फ्रीडम का अर्थ है नियम, फ्रीडम का अर्थ है स्वतंत्रता। बड़ा आश्चर्य की बात है, स्वतंत्रता के नियम, अगर नियम है तो स्वतंत्रता कहां रहा, अगर स्वतंत्रता है तो नियम कहां रहा। तो लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि ये नियम और स्वतंत्रता दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर कोई नियमों को पालन करता है तो वो स्वतंत्र नहीं है, अगर नियमों को तोड़ता है तो तभी वो स्वतंत्र है, यही मूर्खता है। नियमों को पालन करने के द्वारा ही हम स्वतंत्र बन सकते हैं। जैसे ये देश में देश का कोई नियम कानून होता है, ट्रैफिक का कुछ नियम कानून होता है, तो ट्रैफिक का नियम कानून को पालन करोगे तो आप स्वतंत्र हो, गाड़ी कहीं भी चला सकते हो, अब उसको तोड़ोगे तो पकड़ा जाएगा। तो ये मूर्खता के वजह से लोग सोचते हैं कि मैं जितना नियमों को उल्लंघन करूंगा मैं उतना मुक्त हूं, लेकिन उनको मालूम नहीं है हा? राग द्वेष मुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। विधेयात्मा का अर्थ है वो व्यक्ति जो विधियों को पालन करता है वो ही मुक्त है, दैट इज द एसेंस। तो कंस सोच रहा था कि मेरा ये स्वतंत्र विचार है, नहीं वो स्वतंत्र विचार नहीं है, कंस का ये उसका गुणों का बंधन से उत्पन्न हुआ विचार है, लेकिन वो सोच रहा था कि स्वतंत्र है, देयर इज फुलिशनेस। तो असुर अस्तित्व में मूर्ख होते हैं, डेमन मीन्स ए फूल, और मूर्ख होना जो है वो कोई आध्यात्मिकता नहीं है। To be a fool is not spiritual. इसलिए बुद्धि के द्वारा विचार करते हुए हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण का शरण लेना चाहिए। ये बुद्धि का कृष्ण के शरण लेने में बहुत बहुत काम में आता है, has got a lot of significance. Intelligence has got a lot of role to play in surrendering to Krishna. So, क्या बोले हिंदी में, बुद्धि जो है हमारे अंदर कृष्ण की शरण लेने में बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ओनली इंटेलिजेंट पर्सन टेक्स अ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इधर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण, एनी क्वेश्चंस? हाँ
Thank you.
हाँ यानी कुछ दुष्ट लोगों के बीच में फंस गए, फंस गए मतलब उधर से जाने का आपका कोई रास्ता नहीं है। उदाहरण अच्छा ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब फंस गए। मैं सोचा कि अभी ऐसा सोचा कि उधर से आप निकल नहीं सकते, उनके साथ आसक्ति हो गया है ऐसा कुछ। फंसने का अर्थ आसक्ति। हाँ देखिए असत में हम उस जगह पे है जहां हमारा मन है। ट्रेन में आप बैठे हो तो आपका ट्रेन जो है ट्रेन में आपका शरीर बैठा है कि नहीं। बहुत सारे बातें चलती रहती है लेकिन आपका अगर मन जो कृष्ण के विषय में है, संबंध में गुरु साधु शास्त्र के संपर्क में है, हाँ आप ट्रेन में रहते हुए भी ट्रेन में नहीं हो। जैसे भगवीता में भगवान कहते हैं पद्म पत्र मेवा अंबसा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवांभसा। कोई व्यक्ति आश्रम में बैठ के भी भौतिक जगत में हो सकता है क्योंकि अनेकों अनेकों जन्मों का संस्कार को साथ में लेके बैठा है मन में ही और उसके साथ संगति कर रहा है। कोई व्यक्ति संसार में या ट्रेन में कहीं और बैठे हुए भी वो कृष्ण का स्मरण करता हो। हाँ लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे अंदर उस प्रकार कार्य करने की योग्यता हो। इसलिए जो नए नए भक्ति से मैं जुड़ते हैं सबसे पहला हम क्या करते हैं उनको केवल कृष्ण के संबंधित वस्तुओं के साथ ही उनका संपर्क रखते हैं, तदीय वस्तुओं के साथ ही। असित में कृष्ण के इस जगत में प्रत्येक वस्तु कृष्ण के संबंध में है, लेकिन तो इस अगर प्रत्येक वस्तु कृष्ण के संबंध में है तो कोई भी वस्तु के साथ संपर्क में रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उनके पास ऐसी योग्यता नहीं है कि हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में देखे। तो सबसे पहला कृष्ण के संबंधित वस्तुओं के साथ ही जोड़ेंगे और जैसे जैसे उनका हृदय की शुद्धिकरण होता है, जैसे जैसे उनकी ज्ञान में स्थित रहता है, तब उनको क्या करेंगे, जितना वो जानता है कि हर वस्तु कृष्ण के संबंध में है तो उतना हद तक हम उनको स्वतंत्रता वो कृष्ण देते हैं। तो कुछ भक्त बोलते हैं भौजी मुझे स्वतंत्रता में कुछ करना है, भौजी हम चाहते करो लेकिन उसकी योग्यता प्राप्त करो, ठीक है नए मुड़ते हो प्रभु मुझे स्वतंत्र जाके प्रचार करना है, जाके उधर वो करना है करना है, तो सबसे पहला क्या है, नहीं आप पहले मंदिर साफ करो और भगवान के सीधा संबंधित तदीय वस्तुओं के साथ में रहो। धीरे धीरे से आप समझोगे कि धन कृष्ण का है, श्री कृष्ण का है और सब कुछ कृष्ण का है। जितना हद तक ये जानोगे उतना हद तक आप रह सकते है कि नहीं? हाँ पता नहीं आपके बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं ट्रेन में जाते सो जाता हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है ट्रेन में। दो कार्य कर सकते हो, प्रभुपाद किताब पढ़ सकते हो, एक कान में लगा सुन सकते हो। कार्य कर सकते हो नहीं सो सकते हो, नींद नहीं है मतलब क्या, अभी भी एनर्जी बचा हुआ है। इतना सारा सेवा रहता है जैसे ट्रेन पकड़ा तो तुरंत सोच क्या हो रहा है, कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं मालूम। स्टेशन आते कुछ उठाता है तो चलो उतर के उतर जाओ वृंदावन में। सो बेटर टू बी इग्नोरेंट टुवर्ड्स मटेरियल वर्ल्ड, बेटर टू बी इग्नोरेंट। हमारे अंदर तीनों गुण हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। कृष्ण के संबंधित वस्तुएं जो हैं उनके प्रति सात्विक भाव से अगर देखेंगे तो हम ज्यादा कृष्ण के संबंधित वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसे जड़ बरत, जड़ भरत को ऐसा लग रहा था, सारे लोग सोचते थे तमोगुण है, जानवर जैसा है कि नहीं, एनिमल, क्या वो प्रभुपाद जी क्या लिखते, मैन एनिमल ऐसा कुछ लिखते हैं ना, हाँ, पशु कर, पशु के रूप में लोग देते थे, जड़ है। लेकिन जैसे रघुगण ने आत्मा के विषय में प्रश्न पूछा, तुरंत एकदम बिल्कुल चेतना प्रकट होगी, है कि नहीं। सो यू शुड हैव द एक्सपर्टाइज टू बी कॉन्शियस टुवर्ड्स कृष्णा एंड टू बी अनकॉन्शियस ऑफ मैटर। जब आप पूर्ण तरीके से कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे तब ये आप कर सकते हो, लेकिन अभी वो अवस्था हमारी नहीं है, ठीक है। ये सही बात है कि जो फिल्मी गीते हैं वो सब राधा कृष्ण के जो लीलाओं का विकृत प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन ये इस प्रकार की विचार हमेशा बना के रखना, ये तभी संभव है जब आप राधा कृष्ण की वास्तविक लीला को आप जानते हो या उसका साक्षात्कार किए हो। सुनते ठीक है। हरे कृष्ण। मंत्राश्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।